फिलहाल सभी के सभी भले ही एक साल जमा हो गए हों, लेकिन सबके मन में अलग अलग तरीके से सवाल चल रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के मन में जो चल रहा था वो ये था, आखिरकार सम्राट और राजवीर को इस तरीके से तहखाने में ले जाकर इलाज करवाने का क्या मतलब था? उन्हें मारकर फेंका भी तो जा सकता था। इस तरह के खतरनाक लोगों को यहाँ रखना किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आस्था और अरमान दोनों के चेहरे पूरी तरह शांत थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहीं बैठे हुए थे। अरमान और आस्था को देखकर साफ पता चल रहा था मानो कि उन लोगों का क्या करना है उसका इंतजाम वो पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट या जल्दबाजी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन सभी का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से खराब हो रखा था, खासकर आहान का। वो बार बार ध्रुव को देखकर बोल रहा था, भाई देख अपने अरमान भाई और भाभी ने क्या किया। अरे हम तो मानते हैं कि अरमान भाई का ही ऑर्डर हर जगह चलता है, लेकिन इतना खतरनाक प्लान बनाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग मरने के बाद भी नहीं मरते हैं, एक बार फिर जिंदा होकर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर तो मेरी छोटी सी बेटी भी रहती है, अगर मेरी प्रिंसेस को कुछ हो गया, मेरी रौनक को कुछ हो गया या मेरे चैंप अंश को कुछ कह दिया तो? नहीं नहीं, कुछ तो करो, जाओ जल्दी से जाकर अरमान भाई से सवाल करो और उनसे पूछो कि उनका उन सनकी लोगों को यहीं रखने का प्लान है क्या। अरे या तो वो उन्हें गोली मार दें या फिर बम से उड़ा दें। मैं तो कहता हूँ उनको गोली मारने के बाद बम से उड़ाकर जो भी राख बचे उसे भी हम ही दफना दें। जब तक मैं ऐसा अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख लूंगा मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल को सुकून आएगा, वरना वो लोग तो राख के ढेर में भी वापस जिंदा इंसान बनकर लौट आएंगे। नहीं भाई नहीं, इतनी खतरनाक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। ऐसा लग रहा है कि मैं सांस भी ले रहा हूँ तो मेरे आसपास भी कोई भारी खतरा मंडरा रहा है। आहान की ये सारी बातें सुनकर ध्रुव पूरी तरह से इरिटेट हो रहा था। फिर उसने उसकी ओर झुककर उसके कान में धीरे से कहा, अगर तुझे इतनी सारी बातें जोर जोर से निकालनी है और अपनी फीलिंग्स बाहर लानी है तो तू खुद जाकर अरमान भाई से क्यों नहीं कहता? मुझे क्यों बलि का बकरा बनाना चाहता है? मुझे क्यों अरमान भाई के सामने खड़ा करना चाहता है? तुझे क्या मैं बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ जो तेरी इन पागलपन वाली बातों में तेरे साथ हिस्सा बनूं? देख तुझे जो करना है तो कर, लेकिन प्लीज़ मेरे इस कान में जो तू हर वक्त फुसफुसाता रहता है उसे बंद कर यार, मेरा कान सच में दर्द करने लगा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपना ही इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक तेरी ये कानाफूसी खत्म ही नहीं होती। अब ध्रुव की सुनकर आहान थोड़ा सा शांत तो हुआ लेकिन फिर भी मुंह बनाकर बैठ गया और बोला, यार तू ही तो मेरा इकलौता सहारा था, पर अब तो दोस्त भी दोस्त न रहा, अब किससे अपनी बात कहूँ? वो मायूसी भरी शक्ल बनाकर बैठ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव के मन में भी एक बात चल रही थी। उसने सोचा, भले ही आहान ये सारी बातें अपने तरीके से कह रहा हो लेकिन उसके शब्दों में कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट तो है। आखिर इतनी खतरनाक लोगों को इस तरीके से सिंघानिया मेंशन में लेकर आने का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन फिलहाल वो कुछ देर तक शांत ही रहा क्योंकि अरमान और आस्था के चेहरे की वो अजीब सी शांति उसे कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिलहाल कुछ ही देर में नानी माँ, प्रियंका, मनोज जी और साथ ही सीमा जी भी आकर बैठ गए थे। वहीं दादाजी अभिमान जी से कह रहे थे, हमारे पास मौका था बेटा और वसुंधरा ने हम लोगों की मदद की थी। तुम चाहते तो वसुंधरा को वहां से लेकर यहां आ सकते थे। आखिरकार तुम शांत क्यों रहे? कम से कम उसे एक इशारा तो कर सकते थे। वो तुम्हें किस तरह से उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी लेकिन तुमने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार बेटा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम वसुंधरा के बिना रह भी नहीं पा रहे हो और तुम उसे माफ करके अपने साथ रखना भी नहीं चाहते हो। इतना घमंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभिमान। कहीं ना कहीं दादाजी ने कड़क अंदाज में अभिमान जी को समझाना शुरू कर दिया था, साथ ही डांट में भी उनका प्यार साफ झलक रहा था। दादाजी इस वक्त आप अभिमान जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, बेटा तूने देखा ना वसुंधरा कितनी ज्यादा बदल चुकी है। अपनी जान की फिक्र करने वाली आज उसने अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचाई और उसने हमारे प्लान में भी साथ दिया। इसका मतलब साफ है वो अब बदल चुकी है। अब हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसे घर वापस बुलाकर एक मौका और देना चाहिए। ये सुनकर अभिमान जी ने बस सपाट नजरों से अपने पिता को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दादाजी थोड़ा नाराज होकर बोले, पता नहीं किस मिट्टी का बना है तू, इतनी बातें कर रहा हूँ लेकिन तू है कि हमारी बात सुनता ही नहीं। ये कहकर दादाजी रूठे हुए से जाकर हॉल में बैठ गए। आस्था ने गहरी नजरों से दादाजी की ओर देखा लेकिन फिलहाल सभी लोग अलग अलग बातों में उलझे हुए थे। उधर आकाश रश्मि के पास मिनी हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था। उसने अच्छी तरह से उसकी तसल्ली कर दी थी कि पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है। तभी आकाश रश्मि को सुलाकर और उसे आराम करते हुए देखकर बाहर सबके पास आकर बैठ गया था। आखिरकार अभी इस बार का सबसे बड़ा सीन होना बाकी था कि राजवीर और सम्राट के साथ क्या होने वाला है और उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। अभी तक इस बात को अरमान और आस्था ने रिवील नहीं किया था। वहीं वंशिका ध्रुव, सुमित, राधिका सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए थे। नानी माँ सबके साथ तो बैठ गई थी, लेकिन अभी भी उनकी आंखों के सामने बार बार आस्था का मृत सा चेहरा और अरमान का उसे अपनी गोद में पकड़कर बैठना, ये सभी दृश्य घूम रहे थे। अचानक जैसे ही ये सारा मंजर एक बार फिर नानी माँ की आंखों के सामने ठहर गया, वो घबराकर तुरंत उठ खड़ी हुई और सीधा आस्था के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी नानी माँ थोड़ी घबराई हुई आस्था के पास आकर खड़ी हो गई और उसके गालों को छूते हुए उसकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। आस्था समझ चुकी थी कि अपनी मौत का झूठा नाटक करके उसने सच तो सामने ला दिया, लेकिन नानी माँ को बहुत दुख पहुँचा दिया था। आस्था ने तुरंत नानी माँ को गले से लगाया, उनके माथे को चूमा और कहा, अरे मेरी प्यारी नानी माँ, प्लीज आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बस एक नाटक था। आपको याद नहीं जब गांव में रामलीला होती थी और हम राधा का किरदार निभाते थे? बस उसी तरह का ये भी एक अभिनय था। और सच बताऊं नानी माँ, अगर आपने हमें उस वक्त अभिनय करना नहीं सिखाया होता तो आज हम अपनी मौत का इतना बड़ा नाटक भी नहीं कर पाते। ये सुनते ही नानी माँ ने तुरंत आस्था के कान पकड़ कर खींचे और बोली, गौरी तू कितनी बदमाश हो गई है, हमने तुझे राधा का किरदार निभाना सिखाया था, ये नहीं सिखाया था कि अपनी मौत का नाटक भी करने लगी। एक तो तूने ये सब करके हमारी जान ही निकाल दी, तुझे पता है उस वक्त हमारी हालत क्या थी? आज भी वो मंजर याद करके हमारी रूह कांप जाती है। नानी माँ की बात सुनकर आस्था उन्हें शांत करने लगी। तभी अविनाश और एंजल भी वहाँ आ गए। अविनाश ने भी नानी माँ की बात से सहमति जताते हुए कहा, गौरी नानी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, चाहे कुछ भी रहा हो लेकिन तुम्हें इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था, और अगर ऐसा कोई प्लान था तो हमें पहले से बता देना चाहिए था, तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त हमारी हालत कैसी हो गई थी।
वहीं एंजल भी जाकर आस्था के पास गए और आस्था के माथे को चूमकर बोली, सच बताओ आस्था, आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि किसी अपने का दूर जाना कैसा एहसास होता है। सचमुच आस्था, आगे से कभी भी ऐसा कुछ मत करना, तुम वाकई हम सबकी जिंदगी हो। मुझे पता है कि अविनाश तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन आज तो सच में मुझे भी अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। और वाकई तुम्हारी सांस टूटती देख ऐसा लग रहा था मानो कि हमारा जीवन ही अटक गया हो, जीने की हमारी वजह ही खत्म हो गई हो। सचमुच आगे से कभी ऐसी कोई गलती मत करना। तब एंजल को इतना इमोशनल होता हुआ देखकर जल्दी से आस्था ने उनका हाथ थामा और बोली, एंजल भाभी प्लीज, हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप सब प्लीज हमें बार बार हमारी गलती का एहसास मत कराइए। हाँ, हम मानते हैं कि हमने आप सबको चोट पहुँचाई है, दर्द दिया है, लेकिन दो खतरनाक साजिशों का सच बाहर लाने के लिए, साथ ही उनका जिंदगी से हमेशा के लिए अंत करने के लिए, ये करना बेहद जरूरी था। जैसे ही आस्था ने ये कहा, कहीं ना कहीं सब पूरी तरह से शांत हो गए थे। लेकिन वहीं उसी वक्त अबीर सिंह राठौड़ भी मायूसी भरे चेहरे के साथ आकर वहीं बैठ गया। जैसे ही अरमान की नज़र उस पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गई। अबीर की बातें, उसका बर्ताव, उसकी हरकतें, सब कुछ अरमान के दिमाग में घूमने लगा। कुछ देर पहले ही अबीर किस तरह बकवास कर रहा था और किस हद तक वो अरमान की जान लेने पर उतारू था, ये सब याद आते ही अरमान के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ अबीर सिंह राठौर के पास पहुंचा। उधर अबीर के मन में डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद अभी इसी वक्त अरमान उसका गला दबा देगा या उसे गोली मार देगा। आखिरकार उसने इतनी ज्यादा नफरत का इजहार जो किया था वहां पर, इसीलिए अबीर पूरी तरह से अपनी सजा पाने के लिए तैयार खड़ा था। वहीं इस वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और साथ ही अविनाश, सभी को यही लग रहा था कि शायद आज अबीर सिंह राठौर का आखिरी पल है और किसी भी पल उसकी जान जा सकती है, क्योंकि उसने अरमान से बदतमीजी की थी, उसे खरी खोटी सुनाई थी, उसकी जान लेने पर उतारू हो गया था। इतना ही नहीं, उसने बंदूक की नली तक उसके सिर पर रख दी थी। इसीलिए जैसे ही अरमान वहां उसकी ओर बढ़ा, अबीर समझ चुका था कि उसका आखिरी वक्त आ चुका था। वहीं आस्था भी थोड़ा घबरा गई थी। वो तुरंत अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रख लिया। अरमान ने हल्की मुस्कुराहट से आस्था की ओर देखा और अगले ही पल वो अबीर सिंह राठौर की ओर करीब जाने लगा। आस्था घबरा कर बोली, अरमान जी प्लीज मिस्टर राठौर को बख्श दीजिए। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान ने बस एक नज़र उस पर डाली और एक कदम और आगे बढ़ गया। अबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे पूरा यकीन था कि किसी भी पल अरमान अपने किसी खास हथियार, स्क्रू ड्राइवर या किसी नुकीली चीज से उसकी जान ले लेगा। उसे यूं आंखें बंद किए खड़ा देखकर अरमान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और अगले ही पल सबके सामने अरमान ने अचानक अबीर को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। जो लोग अभी तक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे वहीं रुक गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सिंघानिया इस तरह अबीर को गले लगाएगा और इतना ही नहीं, उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे थैंक यू कहेगा। आस्था भी आंखें बड़ी करके ये सब देख रही थी। अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर राठौर, वाकई मेरी जान लेने की कोशिश करके आपने ये साबित कर दिया कि आप एक वफादार दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि अब आपको ये बात समझ आ चुकी है कि अरमान सिंह हानिया की बीवी अरमान की ही रहेगी। वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन दोस्त के नाते आपने जो फर्ज निभाया वो काबिले तारीफ है। और सच कहूं, आप एक अच्छे दोस्त बनने के लायक हैं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे कभी पसंद नहीं किया, खासकर आस्था के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और सच बताऊं, मैं खुद भी कभी आस्था के काबिल नहीं था, लेकिन कब वो मेरी जिंदगी बन गई मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। आस्था मेरी पूरी दुनिया है, उसके बिना मैं सांस लेने के बारे में भी नहीं सोच सकता। लेकिन जिस तरह आकाश और सुमित मेरे दोस्त हैं, ध्रुव और आहान मेरे भाई हैं, उसी तरह आज के बाद आप भी उनमें शामिल हैं। जैसे ही अरमान ने ये कहा, अबीर की आंखें भर आईं। उसने भी आगे बढ़कर अरमान को गले लगा लिया। हालांकि उसके दिल में अरमान के लिए पहले नफरत थी, क्योंकि उसे लगता था कि अरमान आस्था के काबिल नहीं है। लेकिन अरमान ने हर बार खुद को आस्था के लिए साबित किया था। आज वो पूरी तरह से टूट गया था और सच स्वीकार कर चुका था। अबीर धीरे से बोला, मिस्टर सिंघानिया, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं कभी भी आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सुनकर एक पल के लिए अरमान के चेहरे के भाव थोड़े गहरे हो गए। अबीर थोड़ा घबरा गया और तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। ये सुनकर इस बार अरमान के चेहरे पर हल्की नहीं बल्कि खुलकर मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो दिल से निकली थी और पूरे माहौल में एक अजीब सी राहत फैला रही थी। उसी वक्त सब लोग भी आगे बढ़ाए, ध्रुव, आकाश, सुमित, सबने आकर अरमान को गले लगा लिया। अरमान ने इशारे से अबीर को भी अपने साथ शामिल किया और अब वो भी इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। वहीं अविनाश की आंखें नम हो गई थी। वो आगे बढ़ा, आस्था के सिर पर हाथ रखा और बोला, अब सब ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी तरह का कोई दुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन तभी, आखिर क्या चल रहा है और बनासा के दिमाग में जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और आपके सपोर्ट के लिए बेहद शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।